ओम शांति। आज हम सभी बाबा के इस बेहद घर में शांतिवन में बाप दादा मिलन के लिए पधारे हैं और हम सभी बच्चों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। आज हम सुनेंगे हमारे बीच आदरणीय कमलेश दीदी जी पहुंचे हैं। आपकी ये विशेषता रही है कि बाल्यकाल से ही आप बाबा के इस ज्ञान से जुड़े हुए हैं। शायद 10 साल की भी उम्र हो, क्योंकि 50 साल से दीदी जी ज्ञान में चल रहे हैं। मन आप सोच सकते हैं कितनी छोटी उम्र में बाबा के बनकर अपनी पढ़ाई को भी अच्छी तरह से पूरा करते हुए साकार बाबा की पालना ली हुई है। और बाबा तो विशेष यही ध्यान देते थे कि बच्चे आप पढ़ेंगे तो बाबा की अनेक आत्माओं की सेवा आप कर सकेंगे। जो पढ़े लिखे होते हैं उनको इंग्लिश में कौन जाकर के बाबा का परिचय देगा, तो इस तरह से उनमें पहले से ही जैसे बाबा ने ये हुनर भर दिया था। और अपनी यूथ एज में ही, युवा जब उनकी अवस्था थी, तभी अनेक जो यूथ प्रोग्राम्स बनते थे उसमें आप विशेष अपना योगदान देते थे। कई रैलियां निकली, कई अभियान निकले यूथ विंग की ओर से, तो आप यूथ विंग के एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर्स भी हैं। और विशेष अभी शिपिंग एविएशन टूरिज्म प्रोग्राम्स के भी आप कोऑर्डिनेटर हैं। और जो आपने देश विदेश में अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया है अपने ज्ञान योग के कई ऐसे अनुभवों से, जो वहां की आत्माएं भी बाबा के बच्चे बनने के बाद अनेक आत्माओं को, अनेक परिवारों को उन्होंने भी बाबा का बनाया है। तो ऐसे उड़ती कला में सदा उड़ने वाली त्याग तपस्या की हम कहेंगे मूरत, क्योंकि हमने जब से देखा है कमलेश दीदी को हम जानते हैं कि उनकी एक ही विशेषता रही कि सभी भाई बहने जो भी जिनमें जो विशेषता हो उस विशेषता को हम कैसे कार्य में बाबा के लगाएं और उनका वो योगदान सदा के लिए अमर रहे, ये खास हमने दीदी जी के अंदर देखा है। और 83 से सांताक्रूज सेंटर जो मीरा बहन जी वहां पर निमित है, लेकिन आप टोटल वहां उनके साथ में सहयोगी बनकर के अपना पूरा योगदान बाबा के यज्ञ के लिए दे रहे हैं। तो ऐसे आदरणीय दीदी जी जो हम सभी को बाबा की जो साकार की यादें हैं, जो उन्होंने उस समय के पल अनुभव किए हैं, मनमोहिनी दीदी जिनके साथ में आपका बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन भी रहा, पालना भी ली है, तो ऐसे तपस्वी आत्मा के द्वारा आज हम सुनेंगे त्याग तपस्या और सेवा किस तरह से हम अपने जीवन के अंदर उसका श्रृंगार बना दे। तो आदरणीय दीदी कमलेश जी से सुनेंगे।
ओम शांति। कमाल है बाबा की और बाबा के द्वारा रचे गए उन अनमोल ज्ञान रत्नों की, जिनको हम दादियां या वरिष्ठ भाई और बहने कहते हैं। जैसे बाबा ने अनेक आत्माओं के जीवन को संवारा है, बनाया है, उसको श्रृंगारा है, ऐसे हमारी दादियों ने भी अपने त्याग तपस्या और सेवा से अनेकों के जीवन को बनाया है और उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत बने हैं। आज जब सुबह बाबा की मुरली सुन रहे थे तो बाबा ने मुरली में एक बात कही जिसका सारी था कि ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा, इसके वाइब्रेशंस विश्व में फैलाओ। यही उसका मुख्य सार था जिसको बाबा ने बहुत अच्छी रीति से एक्सप्लेन किया। हम सब ने आज बाबा के वो महावाक्य सुने और हम सभी ये बात भी जानते हैं, बाबा ने कई बार इस विषय को समय प्रति समय स्पष्ट किया है। क्लासेस में भी हम, बहनों की क्लासेस में भी हम सुनते आए हैं कि त्याग हमारी तपस्या का आधार है और जहां त्याग और तपस्या है वहां सेवा बहुत ही ऑटोमेटिकली चलती रहती है। क्योंकि जो आत्मा त्यागी तपस्वी है, जो ब्राह्मण आत्मा त्यागी तपस्वी है, उसके नैन चैन, उसका बोलना करना रहना सब कुछ, उसके हर कर्म से अगर आप देखेंगे तो सेवा दिखाई देगी। उसका हर कर्म, उसको बोलने की जरूरत नहीं होती है लेकिन उसके नैन चैन ही सेवा करते हैं। जैसे अभी जब आप दादियों से मिलते हैं, मैं कल का दृश्य भी देख रही थी कि जब हमारी दादी दादी चान की बाहर निकली हॉल से, तो चारों तरफ अपने भाई बहन खड़े हुए थे और दादी को बड़े प्यार से दादी दादी कहकर बुला रहे थे। इससे वो दृष्टि पड़ी, सब कुछ मिला। ऐसा अनुभव है ना आपका, आप सबका भी अनुभव है ना, लगता है ना बस वो दृष्टि मिल जाए। क्यों? क्योंकि जैसे दादी जी कल सुना भी रहे थे कि मेरे सामने हमेशा बाबा रहता है, मैं बाबा से बातें करती रहती हूं। तो जो त्याग है वो वास्तव में हमारी तपस्या का आधार है और तपस्या और त्याग जब दोनों मिल जाते हैं तो सेवा स्वाभाविक रूप से होती है। तो इसी प्रकार हमारा जो जीवन है, अभी जो बीके लाइफ है, वो हमारी जो बीके लाइफ है उसमें क्या होनी चाहिए, हमारा जीवन भी साधनों पर आधारित ना हो लेकिन हमारी बीके लाइफ भी साधना पर आधारित हो। क्योंकि अंत समय जब आएगा तो हमारी साधना ही हमारा रक्षक बनेगी, हमारी साधना ही वो हमारे कार्य में आएगी, वो हमारा कवच बनेगी। इसीलिए साधना की बहुत आवश्यकता है। और साधना के लिए क्या करना होता है, बाबा का एक महावाक्य बहुत कॉमन है जो हम लगभग मुरली में सुनते रहते हैं, साकार मुरली में भी सुनते रहते हैं। तो साधना का अर्थ देह सहित देह के संबंधों का त्याग ही नहीं, वो तो है, बाबा हमेशा कहते हैं, लेकिन जो देहिक पदार्थ हैं उन देहिक पदार्थों के आकर्षण का भी त्याग, वो त्याग बहुत जरूरी है। प्रायः देखने में क्या आता है, जो आज वातावरण है टोटल जगत में, सारे संसार में जो आज वातावरण है वो इस प्रकार का है कि मनुष्य देह के संबंध, उनसे तो उसका त्याग कहो या वैराग कहो वो हो जाता है, वो इजी है। क्यों? क्योंकि जैसे बाबा कहते भी हैं और हम जानते भी हैं, बच्चे ये कलयुगी संबंध हैं, ये दुखदाई हैं, ये सब हमें रुलाने वाले हैं और हमारे कई इस प्रकार के जीवन के खट्टे मीठे कड़वे अनुभव उनके साथ होते हैं। बाबा का जब बनते हैं तो हमारे लिए उनसे अपनी मोह ममता हटाना वो आसान हो जाता है, यद्यपि हम ऐसा समझते हों कि वो वास्तविक त्याग या वास्तविक वैराग नहीं होता है। आमतौर से वो कुछ ना कुछ, क्योंकि कड़वे अनुभवों के ऊपर आधारित होता है या कुछ उनके द्वारा हमारे जीवन में समस्याएं आई हुई होती हैं या उनसे हमें कष्ट व दुख मिला होता है, उनके प्रति एक प्रकार की जैसे किनारा करने की भावना, या कहीं अंदर में हम देखेंगे जिसको हम कहते हैं, मोटे रूप में कहते हैं घृणा भावना, लेकिन उसको सूक्ष्म रूप से हम कहेंगे बस ये मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, इनसे मेरी बनती नहीं है, तो वो उस प्रकार का त्याग थोड़ा सा बुद्धि हमारी उनसे हटी हुई होती है आमतौर से, प्रायः ये देखने में आता है। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली हम क्या कहेंगे कि देहों के संबंधों से मन और बुद्धि को हटाना आज दुनिया में फिर भी आसान हो गया है, ये वो दुख देने वाले हैं। लेकिन जो देह के लिए साधन यूज होते हैं, जो देहिक पदार्थ, उनकी जो आकर्षण है उससे परे हो जाना, उनको यूज भी कर रहे हैं लेकिन यूज करते हुए भी उसकी आकर्षण से न्यारे, उसकी आकर्षण से बियॉन्ड, वो मुझे खींचे नहीं, मेरी तपस्या में बाधा ना बने, वो थोड़ा लगता है डिफिकल्ट है। वो आकर्षण मुझे खींचती रहती है और उसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि जो देह के लिए हम साधन यूज करते हैं वो मुझे कंफर्ट देते हैं, वो मुझे आराम देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे घर में कार है, मेरे घर में व्हीकल है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी है, अब मुझे वो कंफर्ट देता है, तो कंफर्ट देता है तो मुझे उसके बिना चलता नहीं। एक है कि मेरे पास है, हम उसको यूज कर रहे हैं तो भी ठीक, और किसी दिन वो बिगड़ गया, समझो चार पांच दिन वो गैराज में चला गया वो साधन, तो भी ठीक। और एक है उसके बिना हम रह नहीं सकते, दोनों में अंतर है। तो प्रायः ये देखने में आता है, ये तो एक मिसाल मैंने आपको दिया कि जो देह के लिए हम साधन यूज कर रहे हैं क्योंकि वो मुझे कंफर्ट देते हैं, आराम देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ बहुत गर्मी हो, एसी नहीं चल रहा हो या एयर कूलर नहीं चल रहा हो और सब पसीना पसीना आ रहा हो, कभी मच्छर आएगा कभी मक्खी आएगी, तो क्या होगा हमारी साधना, क्या होगी साधना, क्या होगी वो शायद भंग होने के चांसेस हैं, योग नहीं लगेगा, ध्यान कहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एयर कूलर है या एसी है ये मुझे क्या दे रहा है, मेरे शरीर को आराम दे रहा है, और इसीलिए हमारी बुद्धि तुरंत जाती है। और जहां आप देखिए देह के पदार्थों की तरफ यदि मेरा मन और बुद्धि जाता है तो ये स्वाभाविक है वहां मेरा और तेरा अवश्य आएगा 100%। और जहां मेरा और तेरा आएगा तो वहां क्या होगा, अपनी देह की तरह बुद्धि जाएगी। और इसीलिए आज दुनिया में सब क्या कहते हैं, सब स्वार्थी हो गए हैं। तो वो जो हमें त्याग करना है वो तो त्याग करना ही करना है, लेकिन इस चीज का त्याग ये बहुत जरूरी है कि कौन सा हम त्याग करें, कि जो देह के प्रति हम साधन यूज करते हैं उसकी जो हमें आकर्षण होती है, वो आकर्षण मुझे बार बार खींचती है, उस आकर्षण का त्याग करना ये बहुत जरूरी है, तभी मेरी तपस्या होगी। और वो तपस्या क्या है, देखिए तपस्या केवल बैठकर योग करना नहीं। तपस्या किसको कहते हैं, जो कोई कार्य हम निरंतर करते रहें। जैसे आप देखो जैन धर्म वाले होते हैं, आप में से शायद कोई जानते होंगे कि वो उनका एक समय आता है जब वो वर्षी तप करते हैं, शुरू करते हैं, और जो वर्षी तप होता है उसमें क्या करते हैं, एक दिन वो खाते हैं, एक दिन वो नहीं खाते, और जिस दिन एक दिन खाते हैं एक दिन नहीं खाते, और जिस दिन खाते हैं उस दिन भी वो सूर्यास्त से पहले अपना पूरा खाकर पूरा करते हैं। वो भी क्या है, वो भी एक तप है, पूरा वर्ष भर चलता है। और जब उनका वो दिन आता है तब उस तप को वो वहां पर जाके उसको जो उनका फंक्शन होता है बहुत बड़ा, जो लोग ये करते हैं वर्षी तप, उसके लिए बहुत बड़ा वो एक महोत्सव जैसा वो प्रोग्राम रचते हैं। तो तपस्या माना क्या कि जो मेरी साधना है, जो मेरा कार्य है वो निरंतर चलता रहे, ऐसे ही मेरे उठने बैठने चलने देखने इन सब से हमारी तपस्या दिखाई दे, हमारी साधना दिखाई दे, अर्थात हमारी रूहानियत दिखाई दे। देखो आध्यात्मिक व्यक्ति केवल कपड़ों से नहीं बनता है, केवल वेशभूषा से नहीं बनता है, या लेक्चर देने से नहीं बनता है। अब बहुत अच्छे ओरेटर हैं, अब बहुत अच्छा भाषण करते हैं, दुनिया में ऐसे बहुत लोग पड़े हैं, लेकिन आध्यात्मिकता वो मेरे हर चीज से दिखाई दे, जिसका मिसाल हमारे सामने है हमारे ब्रह्मा बाबा, साकार बाबा, हमारी दादियां, आज भी हमारे सामने मिसाल है। इसलिए साधना करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने दृष्टि और अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। कभी कभी मुझे एक बात पर बड़ा आश्चर्य होता है, और जैसे लोगों से, भाई बहनों से अपने मिलते हैं, मैं बीके भाई बहनों के, बीके परिवार की बात कर रही हूँ, कहीं भी हो वो, तो कभी कभी कुछ भाई बहन क्या समझते हैं कि तपस्या करना माना क्या कि मीन्स बहुत गंभीर रहना, जैसे बहुत साइलेंस में रहना और बहुत कम बातचीत करना, और जैसे जो हमारी दुनियावी जिम्मेवारी है, पारिवारिक जिम्मेवारी है, उससे अपने आप को दूर कर देना, उसकी तरफ ध्यान ना देना, ये बाबा ने हमको तपस्या नहीं सिखाई। कहते हैं प्रवृत्ति में रहते हैं या तो हम तपस्या कर सकेंगे या तो हम परिवार की जिम्मेवारियों को संभाल सकेंगे, नहीं, बाबा ने तो इसमें हमें बैलेंस रखना सिखलाया है। ठीक है साइलेंस में रहना, बट साइलेंस अपने आप में एक खुशी है। अगर आप जो सच्चे योगी होते हैं, आप उनका चेहरा देखिए, उनका चेहरा कैसा दिखाई देता है। बाबा ने क्या कहा, राजयोगी वो है जिसने मुस्कुराहट रूपी आभूषण पहना हुआ हो। खुशी तो मेरे चेहरे का श्रृंगार है, मेरे जीवन का श्रृंगार है। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि मेरे चेहरे पर बहुत या तो जैसे ना कईयों के चेहरे हो सकते बहुत सीरियस सीरियस दिखाई देते हैं, चुप्पी लगी हुई है, वे कुछ बात हो गई है कि नहीं, मैं बाबा की याद में हूं। बाबा की याद में तो बहुत खुश होना चाहिए। अब बाबा की याद में हैं तो खुशी तो दिखाई देनी चाहिए ना, क्यों, क्योंकि हम तो प्रभु मिलन कर रहे हैं। लेकिन वो खुशी दिखाई नहीं देती है, इसीलिए हम कई बार ये कहते हैं कि तपस्या क्या है, वास्तव में ये एक महोत्सव है। तपस्या एक महोत्सव है, इस बात को याद रखना। ये भी एक प्रकार का सेलिब्रेशन है, जैसे हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कोई त्योहार मनाते हैं, तो तपस्या भी एक प्रकार का महोत्सव है। केवल हमको उसको मनाना नहीं आता, उसका स्वरूप हमने उसको बदल दिया है, उसको हमने जीवन में लाया नहीं है। और हम उसको कैसे जीवन में लाएं? आप सबको याद होगा कि एक बार बाबा ने कहा था कि ब्राह्मण जीवन जो है वो मौजों का युग है। बाबा की एक मुरली चली थी इस पे कि ब्राह्मण जीवन जो है मौजों का युग है। कौन सी मौज? तो इस पर हमारी जो बड़ी दादी जी थी उन्होंने भी एक बार बहुत सुंदर बात बताई थी, मधुबन में आओ तो मौजे ही मौजे, ग्लास और ग्लास, ग्लास और गिलास, यही होता है ना। सुबह अमृत वेले उठे, फिर आप चाय आदि लेते हैं, फिर क्लास में आए फिर नाश्ता लेते हैं, फिर क्लास हुई तो भोजन खाते हैं, फिर रेस्ट किया तो फिर चाय लेते हैं, फिर क्लास किया तो भोजन खाते हैं, यही है ना। तो मौजे ही मौजे हैं, कुछ करना नहीं है। लेकिन अदरवाइज भी संगम युग जो है वो हमारा मौजों का युग है। ये तो एक हंसी की बात हुई, रमणीकता की बात हुई, लेकिन अदरवाइज भी वो कैसे मौजों का युग है? सबसे पहली मौज है प्रभु मिलन की मौज। आप देखो दुनिया में भक्त लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं उसको ढूंढने की, कहां कहां जाते हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन वो सब ढूंढते रहते हैं ढूंढते रहते हैं। हम आप सोचिए, हम प्रभु से बात करते हैं, हम रोज प्रभु से मिलन मनाते हैं, हम प्रभु से गाइडेंस लेते हैं, प्रभु ने मुझे अपना बना लिया, मैंने उसको अपना बनाया, उसने मुझे अपना बनाया, प्रभु से मुझे सानिध्य प्राप्त है, मैं प्रभु के समीप हूं, प्रभु ने मुझे अपने दिल तख्त पर बिठाया है, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूं ना, मैं प्रभु के नैनों का नूर हूं। तो आप सोचो ये प्रभु मिलन की मौज सारे कल्प में हो सकती है? और अगर मैं प्रभु मिलन की मौज में हूं तो क्या दुनिया की कोई भी चीज मुझे अपनी तरफ आकर्षित करेगी? करेगी? लेकिन हम उस मौज में सदा रहते हैं, हम उस मौज में रहते हैं, यही तो तपस्या है। बैठ के आप सारा अपना कारोबार छोड़ के आप 4 घंटे बैठ के योग कर रहे हैं, 4 घंटे योग किया भट्टी की, बाहर निकले और बाहर निकल के और किसी ने कुछ ऐसा किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, आपने उसको जोर से बोला या आपको क्रोध आ गया, तो क्या वो भट्टी है? है? क्या वो रियल भट्टी है? सोचो आप। मैं तो कई बार ये भी देखती हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई हम एक जगह पर रोज बैठते हैं और दूसरा व्यक्ति उस पर आकर बैठ जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? तो मौज क्या है? तपस्या जो मौज है वो क्या मौज है? मैं हर क्षण प्रभु के साथ हूं, बाबा के साथ हूं, बाप दादा के साथ हूं, बाबा मेरे साथ है। अब सोचो बाबा की छत्र छाया मेरे सर पर है, वो प्रभु परमात्मा जिसको लोगों ने पाने के लिए जंगल जंगल ढूंढा, घोर वर्ष तपस्या की, कहां कहां गए, कितना त्याग किया, एक पांव पर खड़े रहे, उन्होंने बरसात नहीं देखी, आंधी नहीं देखा, तूफान नहीं देखा, लेकिन लगातार तपस्या करते रहे और आज कितनी सहज रीति से उस परमात्मा ने, उस सर्वशक्तिमान ने मुझे अपना बना लिया। तो ये प्रभु मिलन की मौज, ये मौज नहीं है? तो इन्हीं मौजों में रहना, इसी को ही तपस्या कहते हैं। और जहां तपस्या होगी, जहां ये मौज होगी, वहां हमारे लिए त्याग करना बड़ा आसान हो जाएगा, वो त्याग त्याग नहीं लगेगा। आज सुबह जब बाबा के महावाक्य सुन रहे थे तो एक बड़ी अच्छी बात लगी। बाबा की मुरली तो पहले भी सुनी हुई है, महावाक्य पहले भी सुने हुए हैं। उसमें बाबा ने क्या कहा, बाबा का त्याग, ब्रह्मा बाप का त्याग और विदेशी बच्चों का भाग्य। आप सोचो, उनको बनाने के लिए ब्रह्मा बाप ने त्याग किया, आज उसको देखकर कितने आ गए, ठीक है ना। तो इसीलिए जब हम इन मौजों में रहते हैं तब हमको त्याग त्याग नहीं लगता। क्योंकि कई बार क्या सोचते हैं, कई बाबा के बनते हैं तो हमें ये भी छोड़ना पड़ा, ये भी छोड़ना पड़ा, दादियां भी अभी बहुत मिल नहीं पाती हैं, क्योंकि सबसे तो दादियां नहीं मिलती हैं, साकार बाबा भी तो अभी नहीं है, अव्यक्त पालना के लिए आते हैं तो भी पीछे पीछे बैठना पड़ता है, या वो भी हमको स्क्रीन पे देखना पड़ता है, ये भी छोड़ा वो भी छोड़ा, लेकिन छोड़ा कुछ नहीं। संगम युग की दूसरी मौज जो है वो कौन सी मौज है, सर्व प्राप्तियों की मौज। पहली मौज कौन सी है, प्रभु मिलन के, और दूसरी मौज है प्राप्तियों की मौज। आप सोचो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें क्या मिला, क्या मिला बताओ, क्या मिला, कुछ मिला या नहीं मिला, मिला ना, क्या मिला, खुशी मिली, अच्छा और क्या मिला, बाबा मिला, वो तो बात हो गई, और क्या मिला, बाबा का बनने के बाद और क्या मिला, और क्या मिला। आप सोचो कि मुझे ज्ञान रत्न मिले, दुनिया में किसी के पास यदि धन होता है वो जगह जगह जाके कहता है या कैसे भी शो करेगा, मैं बहुत धनवान हूं, ठीक है। और यहां तो हमको अनगिनत रत्न मिले, बाबा का महावाक्य है, बाबा कहते हैं बच्चे मेरा एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। अभी आपके पास 1000 रत्न है, उन 1000 रत्नों को आप लाख रुपया से मल्टीप्लाई करो, और रत्न कितने, 1000 ही है क्या, कितने रत्न है, अनगिनत हैं। तो अनगिनत रत्नों को आप लाखों लाख से मल्टीप्लाई करो तो मैं कितना समृद्ध हूं। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं, बाबा ने वो ज्ञान दिया जो किसी के पास था ही नहीं, बाबा ने इस ज्ञान को देकर मुझे बुद्धिवान बनाया, बाबा ने ये ज्ञान देकर मुझे नॉलेजफुल बनाया। ना केवल मुझे ज्ञान मिला लेकिन और मुझे क्या प्राप्ति हुई, मुझे इतना बड़ा परिवार मिला, ये इतना बड़ा बेहद का परिवार, ये कम बात है क्या। मैं बहुत बार ये बात कईयों के साथ शेयर करती हूं कि हम कहीं भी जाते हैं, आप देखिए लौकिक में भी समझो कहीं गए अपने लौकिक परिवार वालों के साथ, अपनी जो आपकी फैमिली है, और कुछ आप कहीं सेंटर पर नहीं जा रहे, रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, और रास्ते में जाते हुए आप देखते हैं कि किसी घर के ऊपर झंडा लगा हुआ है, तो आप क्या कहते हैं, देखो बाबा का सेंटर, वो हमारा सेंटर, वो हमारा कहां से आया, लेकिन हमारा वो भावना है ना, यानी आज मेरा परिवार इतना बड़ा परिवार है। कोई बड़े परिवार का व्यक्ति होता है, बड़े परिवार का बच्चा होता है, उसको इतनी खुशी होती है, कहता है मेरा परिवार बहुत बड़ा है और मैं कितने बड़े परिवार का हूं। क्या ये प्राप्ति नहीं है संगम युग की, भले हम कितने भी साधारण हो लेकिन परिवार तो हमारा बड़ा है। कितना बड़ा बाबा मुझे मिला, और बाबा ने मुझ साधारण आत्मा को कहां से कहां लाके बिठा दिया, मुझे कौन सी पोजीशन दे दी, सारी सृष्टि में मुझे सर्वश्रेष्ठ पोजीशन बाबा ने मुझे दे दी, तो क्या ये प्राप्ति नहीं है? आज बाबा ने मुझे गुण और शक्तियां सारी वर्षे में दे दी। बाबा ने कहा ना, मैं विल करता हूं बच्चों को, सारी शक्तियां सारे गुण, वो भी तो सब हमको मिले ना। और न केवल इतना, लेकिन बाबा ने हमें इस बात से भी निश्चिंत करा दिया कि बच्चे तुम्हें भविष्य में स्वर्ग का वर्षा 21 जन्मों के लिए मिलने वाला है। ये भी तो प्राप्ति है ना। तो जब इतनी ऊंची प्राप्ति हमें हुई, तो उस प्राप्ति की मौज में हम क्यों नहीं रहते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि ये प्राप्तियां मुझे कब अनुभव होंगी? जब हम उनका चिंतन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उनको एक दूसरे में आदान प्रदान करेंगे, उसका शेयर करेंगे, उसका दान करेंगे, तब मुझे वो अनुभव होंगे। लेकिन होता क्या है, हम जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो इन आंखों से दिखाई देती हैं, जो इंद्रियों का सुख है, जो कर्मेंद्रियों से मुझे थोड़े समय के लिए अनुभव कराने वाली चीजें हैं, हम उनके पीछे भागते हैं। मुझे एक बात याद आती है कि एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात कौन सी, सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? तो उसने कहा, उसने क्या जवाब दिया, सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? वो ये बात है कि सब लोग दुनिया में ये कहते हैं कि शरीर नश्वर है, ये सब खत्म होने वाला है, ये रहने वाला नहीं है, क्या राजा क्या रंग सब जाएंगे, ये सब कहते हैं। लेकिन मनुष्य ये भूल जाता है कि मुझे भी एक दिन जाना है। वो कहता जरूर है, लेकिन ये खुद भूल जाता है कि मुझे भी एक दिन जाना है। तो अगर मुझे अपनी तपस्या को कायम रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया, तपस्या को आप बहुत हार्ड मत समझो, उसको आप महोत्सव की रीति से लो, उसको आप सेलिब्रेशन की रीति से लो, एक मौज है वो भी एक प्रकार की। लेकिन वो तपस्या क्या है? वो रूहानियत का आनंद, वो आध्यात्मिकता का एक उदाहरण लोगों के सामने। तो वो अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बाबा कहते हैं, हमेशा याद रखो कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मम्मा का ये महावाक्य था कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो ऐसे ही अगर हमें ये याद रहे, वैसे भी हमको ऐसा लगता है कि चाहे यंग और ओल्ड कोई भी हैं, उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है कि ये समझना कि अभी जो समय है बहुत नजदीक है। परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं। आज हम तो क्या दुनिया वाले बोलते हैं, तो मुझे बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे स्वयं को देखना है। लेकिन हम स्वयं को देखने की बजाय हम दूसरों को देखते रहते हैं। देखिए, दो चीजें हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं देखना, एक है मेरा गोल और दूसरा है मेरा रोल। गोल एंड रोल, गोल जिसको विजन कहते हैं। अगर मेरे जीवन में ये तपस्या नहीं, त्याग नहीं, अगर अभी भी आकर्षण बुद्धि आकर्षित होती रहती है, अगर अभी भी बार बार बुद्धि देह या देह के पदार्थ या संबंधों की तरफ जाती है, अभी भी हमारा योग नहीं लगता, बाबा से प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता, इट मीन्स उसको ठीक करने की जरूरत है। और दूसरी बात, हमारे बीके लाइफ का जो पर्पस है वो ही समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी जीवन का लक्ष्य यही है कि अपने जीवन को दिव्य बनाना, अपने जीवन को अपने जीवन में रूहानियत भरना, ये इसका लक्ष्य है। और अगर मेरे जीवन में ये नहीं है तो हमारा जो पर्पस है वही खत्म हो गया। निकले थे तो हम एक लक्ष्य को लेके, जीवन को मुझे दिव्य बनाना है, मुझे ज्ञान को जीवन में धारण करना है। धारण करने तो आए लेकिन जैसे कहते ना, आकाश से गिरा खजूर में अटक गया, वहां से तो निकल गए और यहां आके छोटी 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 बातों में हम फंस गए, हमारी बुद्धियां दूसरी तरफ चली गई। तो हमारे बीके लाइफ का जो पर्पस था, क्या हम उसको पूरा कर पा रहे हैं? क्योंकि हम दूसरों को देखते रहते हैं, स्वयं को नहीं देखते लेकिन दूसरों को हम देखते हैं। इसीलिए हम अपने बार बार, अगर मुझे अपनी तपस्या को कायम रखना है, और जो बाबा ने आज भी कहा कि बच्चे सेवा करो, क्योंकि एक बात बहुत जरूरी है, एक और बात जो आम तौर से कई बार भाई बहन शेयर करते हैं और उनका ये सवाल होता है कि घर वाले सुनते नहीं हैं। समझो किसी के परिवार वाले पूरे ज्ञान में चलते नहीं हैं तो क्या कहेंगे, घर वाले ना सुनते भी नहीं है। दीदी उनको कितना भी सुनाओ ना लेकिन वो हमारा ज्ञान सुनते ही नहीं है, उनको अच्छा ही नहीं लगता है। बात तो बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि हम मुख से सुनाते हैं, हम अपने कर्मों से नहीं सुना रहे उनको, हम उनको व्यवहार से नहीं सुना रहे। हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण अभी तक भी विशाल नहीं बना, अभी भी हदों में अटका हुआ है। तो जो हमारे जीवन के अंदर वो परिवर्तन दिखाई देना चाहिए वो उनको दिखाई देता नहीं, इसलिए वो हमारी बात सुनते नहीं। तो हमारे दृष्टि और दृष्टिकोण के अंदर परिवर्तन होना जरूरी है, हदों से निकालकर उसको बेहद का बनाना है, उसको मुझे विशाल करना है। समझो हमें कुछ ऊंचाई निचाई दिखाई भी देती है, कुछ 19-21 दिखाई भी देता है, भले देरी परिवार में भी क्यों नहीं। आप देखो हमारे हाथ की पांचों उंगलियां समान है क्या? है क्या? है क्या पांचों उंगलियां समान? समान होती है तो ठीक होता है, उसको एबनॉर्मल कहा जाता है ना? अच्छा, एक परिवार में सारे बच्चे या सारे मेंबर समान होते हैं क्या? वो भी अलग अलग होते हैं। ये तो इतना बड़ा देवी परिवार है, और ये देवी परिवार कहाँ से मिला? कोई किस कोने से, कोई किस कोने से, कोई किस कोने से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से, कोई कहाँ से, सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं सारे, और हम सारे आके यहाँ इकट्ठे हो गए। तो क्या हम सारे एक जैसे हो सकेंगे? क्या हम सबका पुरुषार्थ एक जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम दूसरों को क्यों देखते हैं? हम स्वयं को देखें ना। जैसे किसी ने एक बात कही है, कहते हैं हजारों मेले होंगे, हजारों महफिलें होंगे, हजारों मेले होंगे, हजारों महफिलें होंगी, जब तक खुद से ना मिले तब तक आप अकेले ही होंगे। हम दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरा क्या कर रहा है? चलो हम आ गए, इतने बड़े मेले में आ गए, शांतिवन में आ गए, हमने बहुत कुछ सुन भी लिया, अच्छा भी लगा, हमने डायरी में भी नोट कर लिया, लेकिन जीवन रूपी डायरी में वो नोट हुआ क्या? मैंने अपने आप को बदला क्या? मेरी एक तपस्या ऐसी जिससे लोगों को ये लगे कि नहीं, इनका जीवन बड़ा अच्छा है, उनको ये ना लगे कि नहीं हमें त्याग करना होगा, ये करना होगा, उनको लगे नहीं, इनका जीवन, इन्होंने अपना जीवन बना लिया, इनका जीवन सचमुच बड़ा अच्छा है। ऐसा लोगों के मुख से निकले, हमारे जीवन से उनको आध्यात्मिकता की सुगंध आए, ये है हमारी तपस्या। और ये तपस्या यदि हम करते रहे तो क्या होगा? त्याग करना और सेवा करना दोनों ही चीजें हमारे लिए इजी हैं। तो क्या हम ये तपस्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। दूसरी बात, एक और मैं आपसे बात शेयर करना चाहती हूं। हमारे व्यवहार के अंदर दो चीजें दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने हम सब आत्माओं को, यूं तो बाबा हम सब बच्चों को मीठा कहते हैं, मीठे बच्चे रोज सुनते हैं ना, बाबा को मालूम है मेरे बच्चे कैसे हैं, लेकिन फिर भी बाबा कभी भी कड़वा बच्चा नहीं कहते हैं। बाबा हमेशा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह के बात करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा के लिए हर बच्चा मीठा है और इसीलिए बाबा ने हर बच्चे को समान दिया है। जैसे माँ होती है ना, कहते हैं किसी ने माँ से पूछा कि तुमको अपने बच्चे कैसे लगते हैं, उसके 6 बच्चे थे माँ के, कि तुमको अपने बच्चे में से कौन सा बच्चा प्यारा लगता है, उसको ये पूछा गया तो माँ ने कहा कि गुड़ लेकर आओ, तो गुड़ लेकर आए, तो गुड़ को उसको जो गुड़ रखा था उसको कहा इसको यहां से टेस्ट करो तो कैसा है मीठा, उसको उस तरफ से टेस्ट करो यहां से भी मीठा, अच्छा उसको नीचे से टेस्ट करो तो वो भी कैसा था, वो भी मीठा, उसको ऊपर से टेस्ट करो तो वो भी कैसा था, वो भी मीठा। तो माँ ने कहा ये तुम्हारे प्रश्न का जवाब है, माँ को सारे बच्चे प्यारे लगते, सारे बच्चे मीठे हैं। इसी प्रकार बाबा भी तो हमारी माँ है ना, तो उसको भी अपना बच्चा हर कैसा लगता है, मीठा लगता है। बाबा हर बच्चे को, जब प्यारे बाप दादा आते हैं आप उनकी दृष्टि देखो, भले आजकल इतनी लंबी मुरली न भी जलती हो लेकिन आप बाबा की दृष्टि देखो क्या प्यार उसमें भरा हुआ होता है। लेकिन लेने वाले को वो लेना आना चाहिए, वो खींचना आना चाहिए। तो बाबा के लिए हर बच्चा उसका मीठा बच्चा है। तो जब बाबा हमको मीठा बच्चा कहता है तो हमको मीठा बनना है ना। तो 2 शब्द याद रखो, तो 2 शब्द कौन से, मेरे कर्म और व्यवहार से डिविनिटी और डिग्निटी, ये 2 चीजें दिखाई देनी चाहिए। हम बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं, हम छोटे नहीं हैं। वो हमारा बहुत बड़ा बाबा है, सारे विश्व के आत्माओं का वो पिता है। तो आप सोचिए हमारे व्यवहार में कितनी डिग्निटी होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारा व्यवहार कैसा होता है, कहने का दिल नहीं होता इसलिए मैं वो शब्द कहूंगी नहीं, आप सब समझते हैं। हमारा व्यवहार कैसा भी है, कैसी भी वो आत्मा है, लेकिन हमारा व्यवहार बदलना नहीं चाहिए। इतिहास में इसके बहुत से मिसाल आते हैं। बाबा हमेशा राजाओं का मिसाल देते हैं, राजा माने रॉयल, और हम तो रॉयल थे, रॉयल बाबा के बच्चे हैं। तो हमारे व्यवहार में कितनी डिग्निटी, यानी कितना रॉयल व्यवहार हमारा होना चाहिए। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कोई चलते हैं जल्दी जाना ना, एक दूसरे को धक्का देके चलते हैं, थोड़ा तो हम लोगों को समझना चाहिए। हम बाबा के घर में आए हैं, चलो रश है कोई बात नहीं, 5 मिनट आपको ज्यादा लग जाएंगे पहुंचने में। कोई बुजुर्ग चल रहा है, कोई चल नहीं पाता है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, अपने मस्त 4 लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे को खींचते हुए चले जा रहे हैं, ये कोई डिग्निटी नहीं है हमारी। बाबा देखो कैसे चलते थे। आपने कभी ब्रह्मा बाबा की, साकार बाबा की बात सुनते, बाबा की जो स्पीड थी ना चलने की वो बहुत तेज थी, और बच्चे सारे पीछे पीछे दौड़ते थे, जब बाबा के साथ जाना होता था ना वो सब दौड़ते दौड़ते जाते थे। लेकिन रॉयल्टी, इसी प्रकार हमारे व्यवहार में भी, चाहे खाना है चाहे बोलना है, ये आप सोचिए देवताई डिग्निटी किसको कहेंगे, हमारी ब्राह्मणों की भाषा में, बीके की भाषा में देवताई संस्कार। आप सोचिए वो देवताई संस्कार क्या सतयुग में जाके भरेंगे, सतयुग में जाके भरेंगे या अभी भरने हैं। देवता कैसे खाते हैं, देवता कैसे चलते हैं, देवता कैसे बात करते हैं, देवता कैसे रहते हैं, उनकी वेशभूषा भी देखो कैसी है। भल हम कोई वो अभी आभूषण नहीं पहनेंगे, कोई ज्वेलरी नहीं पहनेंगे हम, लेकिन हमारे आभूषण कौन से हैं अभी? गुणी तो हमारी ज्वेलरी है ना। तो जो वो मेरे जीवन में है तब मेरी डिग्निटी है, और इस डिग्निटी को बनाए रखने के लिए बाबा ने हमको कितने सारे सामान दिए। अगर आप सामान की लिस्ट निकालो, कितनी बार मैं समझती हूँ आप सबको भी मधुबन से कितनी बार लिस्ट जाती है, ये सामान की लिस्ट है। आपको सेंटर्स पर भी आप लोगों की निमित टीचर्स बहने कभी देती होंगी, उसका आप अभ्यास भी कभी कभी करते होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, मेरी डे टू डे लाइफ में, जो मेरा रोज की दिनचर्या है, उस दिनचर्या में क्या वो सब चीजें प्रैक्टिकल शेप ले चुकी हैं? वही तपस्या है। खाली बैठ के साधना कर लेना उसको तपस्या नहीं कहते। बैठी बैठ करके जो साधना हम करते हैं वो भी जरूरी है, उससे मेरे अंतःकरण में शक्ति संचित होती है, मुझे बहुत शक्ति मिलती है, और वो शक्ति का उपयोग हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, अपने कर्म में करते हैं, व्यवहार में लाते हैं। और कर्म और व्यवहार में अगर मुझे ज्ञान को लाना है तो मुझे दोनों चीजें, ज्ञान और योग दोनों जरूरी हैं। ज्ञान का मनन चिंतन और साधना। तो ये नहीं समझना कि यहां से उठे तो मेरी तपस्या खत्म हो गई। अभी भी आप आएंगे ना सभी स्टेज पे, देखो आप कैसे आते हैं रॉयल्टी से, कितना समय लगेगा करके 15 मिनट, किसी को ज्यादा किसी को 15 मिनट कम, कितना फर्क है। तो क्या हमारी वो रॉयल्टी है एक दूसरे को पुश करना? बाबा कहते हैं हमें बहुत बहुत रॉयल्टी से चलना है, ये डिग्निटी है हमारी, और ऐसे ही हमारी डिविनिटी दिव्यता, ये कर्म और व्यवहार में दोनों ही चीजें दिखाई देनी चाहिए। तो वो दिखाई देती है हमारे जीवन में। तो अगर मुझे ये याद रहे कि हर घड़ी जो है वो अंतिम घड़ी है, तो हम क्या करेंगे, हम इन चीजों की ओर ध्यान देंगे। और अगर मुझे बुद्धि से ये भूल जाता है तो क्या होता है, अगर मुझे भूल गया तो विस्मृत हो गया तो क्या होगा, फिर हमसे वही की वही जो हम कर्म करते चले आ रहे हैं, जैसे हमारी दिनचर्या है, जैसी हमारी आदतें हैं, हम उन्हीं आदतों की ओर चले जाते हैं। तो इसलिए इस बात पर हमें बहुत ध्यान देना है कि मेरी तपस्या, बाबा ने जो मुझे इतना अनमोल खजाना दिया है, जो बाबा हमें रोज रोज अनेक प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, जो बाबा रोज हमारी प्यार से पालना करते हैं। एक बात पूछती हूँ आप सभी से, आपको लगता है कि बाबा रोज हमें प्यार से पालना दे रहे हैं? सचमुच मुझे प्यार का, वो प्यार का अनुभव होता है? सच्चा सच्चा बोलना, ऐसा नहीं कि सभा में हाथ खड़ा करना है। अच्छा वो आप हमें नहीं बताओ, अपने मन से पूछो, जो बाबा का प्यार जो मुझे अनुभव होना चाहिए वो मुझे अनुभव होता है? बाबा इतनी प्यार से पालना दे रहे हैं। एक बार चली थी कि बाबा से प्यार का अनुभव क्यों नहीं होता, उसका कारण क्या है? बहुत अच्छी बात दादी ने सुनाई थी, गुलजार दादी ने, उन्होंने सुनाया था कि होता क्या है, बाबा कहते हैं अगर प्यार पाना है तो पहले न्यारे बनो, जब तक न्यारे नहीं बनेंगे तब तक प्यारे नहीं बनेंगे। और न्यारे किससे बनना है? देह के संबंध, मन और बुद्धि उससे न्यारी होती नहीं, बाबा का प्यार मिलता नहीं, और फिर चार पांच साल ज्ञान में चलने के बाद भी यही लगता है कि वो हमको तो वो पालना मिली नहीं। अभी बाबा पालना कैसे दे रहे हैं? बाबा के सुबह की क्लास की मुरली वो है बाबा के प्यार की पालना, प्रभु पालना। आप याद रखना, बाबा के सुबह की क्लास की जो मुरली है, भले सुनाने वाला कोई भी है, लेकिन वो है प्रभु प्यार की पालना। जिसको लेना है वो प्रभु प्यार, वो क्लास में सुबह की मुरली। बाबा हमको अनेक अनुभव कराता है, और यही मैं फिर से दोहरा रही हूं, यही जो ज्ञान रत्नों को सुनना, दिनचर्या को श्रीमत प्रमाण बनाना, जीवन को धारणा युक्त बनाना, बाबा की शिक्षाओं पर चलना, यही हमारी रियल तपस्या है। और जहां ये तपस्या है वहां बड़े स्वाभाविक रूप से हमको दुनिया की सारी चीजें फीकी लगेंगी, उनमें रस नहीं दिखाई देगा, और हमारा जीवन कैसा होगा? हमारा जीवन खुशहाल जीवन, हमारे चेहरे पर हर्षित बना, मुस्कान, हमारा जीवन औरों के लिए प्रेरणा। इसीलिए अगर हमें ऐसा अपने बीके लाइफ का आनंद लेना है, सचमुच अगर बाबा का प्यार पाना है, तो अपने जीवन को तपस्या से संपन्न बनाओ। अर्थात जो बाबा हमें कह रहे हैं और जो हम सुन रहे हैं, उसमें अंतर ना हो, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए, तो हमें जीवन बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। कभी हमको ये फील नहीं होगा कि हमने ये जीवन क्यों बनाया, या हमको ये नहीं लगेगा, कुछ अभाव की महसूसता नहीं होगी। हमारी बुद्धि सब प्रकार के लगावों से स्वाभाविक रूप से न्यारी हो जाएगी। सब कुछ करते हुए भी, प्रवृत्ति में रहते हुए भी, लौकिक अलौकिक सेवाएं करते हुए भी, हम बाबा के संग का अनुभव करते रहेंगे और बाबा से के साथ हम मौज मनाते रहेंगे। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे, ठीक है? याद रखना, तपस्या मौज है। तपस्या क्या है, क्या याद रखेंगे? तपस्या मौज है, महोत्सव है, तपस्या खुशी है, ये याद रखना। तपस्या को बहुत मुश्किल मत समझना, उससे हमेशा आप स्माइल भी कर रहे हैं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, आप दूसरे को खुशी दे रहे हैं, ये भी एक प्रकार की तपस्वी लाइफ का एक हिस्सा है। इसीलिए ऐसी लाइफ में मुझे हमेशा रहना है।
ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय कमलेश दीदी जी का। कर्म में योग को मिलाते हुए कैसे हम बाबा को प्रत्यक्ष करें, क्योंकि बाबा जब कहते हैं, साकार बाबा ये हर बार कहते हैं कि जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो शायद आपकी अपनी तपस्या हो, आपका अपना पुरुषार्थ हो, लेकिन वो दिखाई देगा आपके व्यवहार से ही। इसलिए आदरणीय दीदी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें अपने व्यवहार को कैसे कुशल बनाना है, उसमें बाबा की याद को कैसे मिलाना है, न्यारा और प्यारा कैसे होकर चले, इस पर आपने बहुत अच्छी तरह से हमें मार्गदर्शन दी। दीदी जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया।